मुझसे नैना मिलाएंगे, बंसी बजाए गयो श्याम। ओ मुझसे नैना मिलाएंगे, दिल में समाए गयो श्याम। ओ मुझसे नैना मिलाएंगे, दिल में समाए गयो श्याम।
गयो शाम
मुझसे नैना मिलाएंगे, नदिया उड़ाए गयो शाम मुझसे नैना मिलाएंगे,
दिल में समाए गयो शाम
रहो
मुझसे नैना मिलाएंगे,
दिल में समाए गयो शाम मुझसे नैना मिलाएंगे,
बंसी बजाए गयो शाम
सेवा कर तू प्रेम से।
श्री राधे
जादू कर गई उसकी अखियां,
जादू कर गई उसकी अखियां,
रस्ता रोका मोरी पकड़ी भैया,
रस्ता रोका मोरी पकड़ी भैया,
मटकी गिराए गयो शाह,
मटकी गिराए गयो शाह।
ओ मुसे
रास बिहारी लाल की
से नैना मिलाएंगे, तीर चलाए गयो शाम उसे नैना मिलाएंगे,
दिल में समाए गयो शाम। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया,
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 रास रचाए गयो शा ओ मुसे रे राम राय के, रास रचाए गयो शा मुसे रे राम राय के, बंसी बजाए गयो शा मुसे रे राम राय के, बंसी बजाए गयो शा ओ मुसे रे राम राय के, बंसी बजाए गयो शा दिल में समाए गयो शाम, उसे नैना मिलाए गे, दिल में समाए गयो शाम, उसे नैना मिलाए गे।
जो लोग पीछे बैठे हैं वो दोनों हाथ उठा करके ताली से वाह करते हुए बड़े धाम से,
रास बिहारी लाल की है हो,
श्री राम है,
श्री राम है, बंसी बजाए गयो शाम से नैना मिलाएंगे, बंसी बजाए गयो शाम उसे नैना मिलाएंगे,
वृंदावन में
राधे राधे।
आप लोग कहिए केवल राधे राधे, वृंदावन में
राधे राधे,
नहीं नहीं आज तो खाटू श्याम में
राधे राधे,
खाटू श्याम में
राधे राधे,
खाटू श्याम में
राधे राधे,
वृंदावन में
राधे राधे,
यमुना तट पे
राधे राधे,
बंसी वट पे
राधे राधे,
दान गली में
राधे राधे,
मान गली
ओ राधे राधे,
कुंज गली में
राधे राधे,
बांके बिहारी
राधे राधे,
हमारी प्यारी
ओ राधे राधे,
हमारी प्यारी
राधे राधे,
हम सबकी प्यारी
राधे राधे,
प्यारी प्यारी
राधे राधे,
प्राण बल्लभा
राधे राधे,
प्राण बल्लभा
राधे राधे,
प्राण बल्लभा
राधे राधे,
राधे
राधे,
मथुरा जी में
राधे राधे,
गोकुल जी में
राधे राधे,
गाऊ जी में
राधे राधे,
रमण रेत में
राधे राधे,
गिर गोवर्धन
राधे राधे,
परिक्रमा में
राधे राधे,
परिक्रमा में
राधे राधे,
नंद गाँव में
राधे राधे,
नंद गाँव में
राधे राधे,
बरसाने में
राधे राधे,
बरसाने में
राधे राधे,
दोनों हाथ उठा करके
राधे राधे,
हमारी प्यारी
राधे राधे,
श्याम बिहारी
राधे राधे,
हमारी प्यारी
राधे राधे,
तुम्हारी प्यारी
राधे राधे,
सबकी प्यारी
राधे राधे,
प्यारी प्यारी
राधे राधे,
प्राण बल्लभा
राधे राधे,
प्राण बल्लभा।
राधे राधे
परिक्रमा में
राधे राधे
परिक्रमा में
राधे राधे
मोर कुटी पे
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 राधे राधे
कुसुम सरोवर
राधे राधे
मानसी गंगा
राधे राधे
मानसी गंगा
राधे राधे
मानसी गंगा
राधे राधे
नंदगांव में
राधे राधे
नंदगांव में
राधे राधे
बरसाने 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 में
राधे राधे
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 राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
दोनों हाथ उठा करके राधे 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 राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे
राधे राधे
राधे राधे
राधे
राधे
एक बार जोरदार ताली बजा करके रास बिहारी लाल का स्वागत करें। ऐसे ही ठाकुर जी आगे भी झांकी आप लोग बीच बीच में दर्शन करेंगे कथा के। आज हम रुक्मणी मंगल की ओर जा रहे हैं, दिव्य उन झांकियों का दर्शन भी होगा। एक बहुत दिव्य रस की अनुभूति आपको इस महायज्ञ में होगी। भगवान ने गोपियों के साथ रासक क्रीड़ा की और 6 महीने की रात्रि ब्रह्मा की लेकर के भगवान 6 महीने तक महारास लीला करते रहे। अंत में उस कामदेव ने भगवान को अच्युत केशव कहकर के प्रणाम किया। बोलो अच्युत केशव भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो लोग इस कथा को श्रवण करते हैं या इस महारास का पाठ करते हैं, विक्रीडितं ब्रजवधु विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोनु शृणुयादथ वर्णयेदय भक्तिं परां भगवती प्रतलभ्य कामं हृदरोगमास्य पहिनोत्यचरेण धीरः। उनको यदि काम विकार हो, जिसे कहते हैं हृदय रोग, यदि काम विकार हो तो काम विकार को ठीक करने वाली और हृदय रोग को ठीक करने वाली ये महारास की कथा है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण शिवरात्रि के पर्व के दिन, आज भी हमारे मथुरा में ये स्थान है जिसका नाम है भूतेश्वर महादेव, भगवान कृष्ण वहां गए और जाकर के प्रभु ब्रजवासियों के साथ शिव की पूजा की। शिव की पूजा करने के बाद सभी ब्रजवासियों ने वहीं पर विश्राम भी किया। लेकिन रात्रि में उस शिव मंदिर के प्रांगण में सभी ब्रजवासी सोए हुए थे गहरी नींद में। वहां पर एक सर्प आया और नंद बाबा के पैरों से वो सर्प लिपट गया। नंद बाबा की जब आंखें खुली और उन्होंने देखा तो पास में कृष्ण और बलराम जी महाराज सोए हुए थे। भगवान को आवाज लगाकर के कहा, हे कृष्ण, हे बलराम, आओ मेरी रक्षा करो। तो भगवान तुरंत दौड़ करके आए श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान को तो बचपन में ही सर्प पकड़ने की आदत थी। प्रभु ने अपना दाहिना चरण उठाया और उस सर्प को अपने चरणों का स्पर्श प्रभु ने किया। उस सर्प ने सर्प की योनि छोड़ दी और दिव्य शरीर धारण कर लिया। भगवान बोले कि महाराज आप कौन हैं? तो इसने प्रभु को कहा कि अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्या विमानिना चरम दिशः। भगवान, मैं एक सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। मुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था और मैंने एक संत के कुरूप रूप को देख करके उनकी मजाक उड़ाई थी। तो उस संत ने मुझे श्राप दिया कि जा तू सर्प योनि में चला जा। आज मैं इस सर्प योनि में प्रभु पड़ा हूं, लेकिन आपने मेरा उद्धार किया। हे गोविंद, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। देखो, परमात्मा की दृष्टि में रूप का कोई महत्व तो नहीं है, धन का कोई महत्व तो नहीं है, भगवान की दृष्टि में विद्या का कोई महत्व तो नहीं है। भगवान किसी रूपवान व्यक्ति को ही मिले, भगवान किसी विद्यावान व्यक्ति को ही मिले, या भगवान किसी ऊंचे पदवी पर बैठा हुआ व्यक्ति हो उसे ही प्राप्त हो जाए, नहीं नहीं। तीन चीजें परमात्मा हमारे अंदर देखता है, हमारी सुंदरता को केवल प्रभु नहीं देखते। यदि भगवान सुंदरता को ही देखें तो सभी सुंदर व्यक्ति को परमात्मा मिल जाए, नहीं। भगवान देखते हैं लेकिन सुंदरता ही नहीं देखते। तीन चीजें परमात्मा जरूर देखता है इस इंसान के अंदर। सबसे पहला भगवान देखते हैं आहार, दूसरा विचार और तीसरा जीवन। आज व्यक्ति का आहार सुंदर नहीं है तो विचार कैसे सुंदर होंगे? विचारों को सुंदर बनाने के लिए हमको अपने आहार को सुंदर करना ही पड़ेगा, हमको व्यसनों से दूर होना ही पड़ेगा। कभी कभी व्यक्ति अपने ही विचारों के घेरे में इतना उलझ जाता है कि उससे बाहर निकल कर भी वो निकल नहीं पाता। तो विचारों की शुद्धि परम आवश्यक है, और विचार यदि व्यक्ति के अंदर अशुद्ध हैं तो परिवार में भी उस व्यक्ति के अशांत वातावरण बना रहता है, व्यापार में भी वो ठीक प्रकार से व्यक्ति व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकता है, उन्नति के पथ पर उसके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। हमें अपने विचारों को सुंदर अवश्य करना है। तो सुंदर विचारों के लिए व्यक्ति को आहार भी सुंदर करना पड़ेगा। जब तक आहार हमारा घर घर में मांस है, मदिरा है, घर घर में प्रवेश हो गया है इस चीज का, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक बात बताई है, ये दो बहनें हैं लक्ष्मी और शराब, प्रेम से कहिए श्री राधे। ये भागवत में स्पष्ट कहा है, जिस घर पर लक्ष्मी की कृपा हो भैया वहां भूल कर भी इस मदिरा को मत लाना। ये दोनों बहनें हैं वारुणी और लक्ष्मी। बहुत से लोग मुझे तर्क करते हैं मेरे से, कहते हैं महाराज श्री ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो देखते हैं जिस घर में लक्ष्मी की कृपा हो और उस घर में ही शराब के दौर चलते हैं, रात रात लोग पीते हैं और वहाँ खूब लक्ष्मी की कृपा बरसती है, हाँ होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उस घर में लक्ष्मी यदि आपको दिखाई पड़ रही है जहां वारुणी हो, लेकिन कभी यह भी विचार जरूर करना उस घर में कभी खुशियां नहीं होंगी, उदासीनता छाई रहेगी, चाहे कितना भी लक्ष्मी की कृपा क्यों ना हो, कितना भी दौलत क्यों ना हो, कितना भी संपत्तिवान व्यक्ति क्यों ना हो जाए, लेकिन जिस घर में वारुणी आ जाती है वहां पर ठीक है प्रारब्ध के कारण उसको लक्ष्मी तो मिल गई, धन तो उसे प्राप्त हो गया, संपत्ति तो उसे प्राप्त हो गई, लेकिन उस घर में उदासीनता छाई रहती है। तो जिस घर में लक्ष्मी की कृपा हो बोले वहां पर इस वारुणी को मत लाना। भागवत में ये बात आई है अष्टम स्कंद में। एक घर में दोनों बहनें नहीं रह सकती, लक्ष्मी और वारुणी। तो विचारों को सुंदर करने के लिए व्यक्ति को आहार सुंदर करना पड़ता है, और आहार जब सुंदर होता है तो विचार सुंदर होंगे, और विचार जब सुंदर हो जाते हैं व्यक्ति के तो उसका जीवन भी सुंदर बनने लगता है। तो भैया जिसका जीवन सुंदर है, जिसके विचार सुंदर हैं, जिसका आहार सुंदर है, ऐसा ही व्यक्ति मेरे ठाकुर को प्रिय है, ऐसे प्रभु से ही, ऐसे ही व्यक्ति से परमात्मा प्रेम करता है। आज भगवान ने उस सुदर्शन नाम के विद्याधर का उद्धार किया सर्प की योनि से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इसी प्रकार से भगवान ने शंखचूड़ को भी मारा। एक दिन नारद जी महाराज कंस के पास मथुरा में गए थे और जाकर के कंस को पूछा कि भैया कंस देवकी के बालकों का क्या हुआ। तो कंस ने कहा कि नारद जी मैंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला और 7वां देवकी का गर्भ नष्ट हुआ है और 8वां मैंने ब्रज के गांव गांव में अपने अनुयायियों के लिए भेजा, तो उन्होंने देवकी के 8वें पुत्र को भी मार डाला होगा। नारद जी ने कहा कि अरे कंस तू बड़ा मूर्ख है, देख देवकी के 7वें और 8वें बालक अभी जीवित हैं, कहां पर हैं? तो नारद जी ने कहा कि जो नंदगांव में रोहिणी का पुत्र है बलराम, ये देवकी का 7वां पुत्र है, और जो कृष्ण नाम का बालक है यशोदा का, ये देवकी का 8वां पुत्र है। तेरे से वसुदेव जी महाराज ने मिथ्या भाषण किया था और अपने पुत्र को वो छोड़ आए थे गोकुल में और उनकी कन्या लाकर के तुझे प्रदान की थी। इतना सुनते ही कंस को क्रोध आ गया और कंस ने नारद जी को तो विदा किया। नारद जी ने देखा कि अब कंस क्रोध में है, चुपके से वीणा उठाई और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नारद जी का काम बन गया, मैसेज पहुंचा दिया। इधर भगवान भी यमुना जी के तट पर केशी नाम के दानव को मार करके खड़े थे, सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। तो नारद जी को आते हुए जब देखा तो नारद जी को देख करके भगवान बोले आइए नारद जी आइए, आप कंस को खबर दे आए। बोले प्रभु जैसी आपने मुझे प्रेरणा की मैंने कंस को खबर दे दी है, अब मैं आपको परसों मथुरा में देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि नर जी, मैं भी ये विचार कर रहा हूँ कि कब हमारे काका जी अक्रूर जी हमको लेने के लिए ब्रज आमे और मैं ब्रज लीला को पूर्ण करके मथुरा गमन करूं। इस प्रकार से नारद जी आगे तक की लीला भगवान को बता करके वहां से पधारते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले कि परीक्षित, इधर कंस के द्वारा अक्रूर जी महाराज ब्रज में कृष्ण और बलराम को लेने के लिए चले हैं। कि ममाद्या मंगलम नष्टम फलवाश्चैव मे भव यन्नमस्ये भगवतो योगी धेयां। अक्रूर जी भगवान की वंदना भक्ति करते हुए प्रातः काल मथुरा से चले थे और संधि काल को पहुंचे हैं नंदगांव में। रथेन गोकुलम प्राप्तः, नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम जी के सहित अक्रूर जी का बहुत स्वागत किया और लेकर के नंदगांव में महलों में गए, आतिथ्य प्रदान किया। नंद बाबा ने अक्रूर जी को पूछा कि महाराज, आज आपने हमारे इस नंदगांव को कैसे पवित्र किया है, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए ऐसा कौन सा कार्य करूं? तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं कंस की आज्ञा से यहां आया हूं, हमारे लिए महाराज कंस ने क्या खबर भेजी है? आपके लिए कंस ने खबर भेजी है कि परसों मथुरा में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, तो आप उस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए जिसमें बड़े बड़े प्रजा के विशिष्ट लोग पधारेंगे, तो आप दूध दही माखन कर के रूप में कंस को जाकर के प्रदान करिए। और देखिए नंद बाबा, आपके ये दो लाला हैं ना कृष्ण और बलराम, इनको भी आप लेकर के मथुरा चलें। जब प्रभु का नाम लिया तो अपने पिता से भगवान बोले कि बाबा देखो, हम कभी मथुरा नहीं गए, कल आप जब मथुरा में जाएंगे तो हम भी आपके साथ मथुरा चलेंगे। रात्रि में ब्रजरानी यशोदा कृष्ण और बलराम की मथुरा जाने की तैयारी कर रही हैं, एक क्षण के लिए भी माँ के पलक बंद नहीं हुए। सारी रात माँ को जागते हुए निकल गई और प्रातःकाल होने पर कृष्ण और बलराम दोनों का सुंदर स्नान करा करके श्रृंगार किया। दोनों ही अपने अपने माँओं को प्रणाम करके सुंदर रथ में जाकर के विराजे हैं। गोपियों को जब खबर लगी तो गोपियां लोक लाज का त्याग करके भगवान के रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई और गोपियां कृष्ण को बोली कि कन्हैया, आप मथुरा जा रहे हैं ना, आप हमारा किसी स्थिति में त्याग न करें। लेकिन भगवान गोपियों से बोले कि गोपियों, यदि मैं जा रहा हूं तो शीघ्र लौटूंगा भी, आऊंगा भी, तुम धैर्य धारण करना। यदि नहीं आ सका तो अपना संदेश लेकर के मैं किसी दूत को ब्रज भेजूंगा। भगवान का रथ गोपियों को सांत्वना प्रदान करके जब चले हैं, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले,
श्याम मथुरा चले
विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले
माय शोदा पितानंद व्याकुल भय
माय शोदा पितानंद व्याकुल
तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले
हाय मोहन बिना चैन कैसे परे
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 कौन नवनीत माखन की चोरी करे
कौन नवनीत माखन की चोरी
प्राण तन मन हरण
श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले
करती
गौएं भी रो रही थी
प्राण तन मन
हरण
श्याम मथुरा चले
कृष्ण के वियोग से
श्याम मथुरा चले
छोड़ वृंद विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले
छोड़ विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा
भगवान का रथ श्याम सुंदर का रथेन वायु वेगेन कालिंदीम अग्नाशनिम यमुना के तट पर दौड़ता हुआ जा रहा है और अक्रूर जी को प्रभु ने अपने यमुना के तट पर चतुर्स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रजवासियों के रथ पहले ही मथुरा की सीमा पर पहुंच चुके थे। पीछे से कृष्ण और बलराम जी का रथ जब पहुंचा, भगवान रथ से उतरे हैं कृष्ण और बलराम, और अक्रूर जी महाराज ने भगवान को कहा कि प्रभु आप मेरे घर चलें, लेकिन भगवान बोले कि पहले मैं अपने मामा कंस से मिलूं, फिर आपके घर आऊंगा। तो अनमने मन से प्रणाम करके अक्रूर जी भगवान को कंस के पास गए और जाकर के कंस को खबर दी कि कृष्ण और बलराम मथुरा में आ चुके हैं। कंस ने मथुरा में भगवान के लिए सबको सतर्क कर दिया, क्योंकि कृष्ण के प्रति शत्रु भाव था। रात्रि में भगवान मथुरा की सीमा पर विराजे और प्रातःकाल होने पर यमुना जी में स्नान किया कृष्ण और बलराम जी ने, और आकर के अपने पिता नंद को प्रणाम करके कहा, बाबा आप हमको आज्ञा दें, हम मथुरापुरी का दर्शन कराएं। भगवान कोई भी काम अपने बड़ों की बिना आज्ञा लिए नहीं करते थे, तो नंद बाबा की आज्ञा लेकर के श्री कृष्ण मथुरापुरी का अवलोकन करने के लिए गए, क्योंकि बड़ों की आज्ञा लेकर के जो कार्य किया जाए उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखो। और जो बड़ों का अनादर कर, जो बड़ों की उपेक्षा करके काम किया जाता है उसमें विघ्न अवश्य खड़े होते हैं। इसलिए गुरु, माता पिता, पूज्यनीय लोगों की आज्ञा जरूर लेना चाहिए। कृष्ण स्वयं सक्षम हैं, लेकिन फिर भी भगवान आज्ञा लेकर के मथुरापुरी का अवलोकन करने के लिए गए। रजकम कंच दायांतम रंगकारम गदाग्रज, और प्रभु ने रजक का संहार कर अपने ग्वाल बालों को सुंदर वस्त्र धारण कराए। ततः सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतु, उस सुदामा नाम के माली पर भी प्रभु की कृपा हुई। लेकिन बीच राजपथ पर जब श्री कृष्ण पहुंचे तो कंस की एक दासी थी जिसका नाम था कुबजा सरेंद्री, बहुत सुंदर थी, इसकी पीठ में कुब्बड़ निकल रहा था। ये कुबजा सुबह से बैठती थी और शाम तक चंदन घिसती रहती थी, और फिर चंदन लेकर के शाम के वक्त अंगराग करने के लिए कंस का जाती, तो ये चंदन लेकर के कंस को अंगराग करने के लिए जा रही थी। उस कुबजा को जब प्रभु ने देखा तो कुबजा को देख करके प्रभु ने आवाज लगाई, हे सुंदरी। लेकिन इसने पीछे मुड़कर के देखा और बोली कि मैं तो सुंदर नहीं हूं, पहली बार मुझे आज किसी ने सुंदर कहा है। बहुत प्रसन्न हुई कुबजा, भगवान ने इसके हाथ में जो कटोरा देखा चंदन का, तो भगवान ने कहा कि चंदन तू हमारे लगा। तो उस कुबजा ने बीच मथुरा के चौक बाजार में चांदी की दो चौकी बिछाई, एक पर भगवान कृष्ण को बिठाया और दूसरे पर बलराम जी को बिठाया, अपने हाथों से मस्तक पर चंदन का तिलक बनाया और सुंदर फूल बनाए गालों पर ठाकुर जी के, और बाकी प्रसादी जो चंदन था सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने मस्तक से पोत लिया। भगवान ने कुबजा को देखा, विलोक्य कुबजाम युवतीम बराननाम प्रपच्छयांतिम प्रहसन रसप्रदः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मन में विचार करने लगे कृष्ण कि कुबजा टेढ़ी है, तो भगवान बोले फिर मैं भी तो बांके बिहारी हूं, आज दोनों ही टेढ़े टेढ़े मिल गए, ये भी टेढ़ी और हम भी टेढ़े। लेकिन भगवान बोले मन में, मैं कितना भी टेढ़ा क्यों ना हूं, लेकिन मेरी शरण में कोई टेढ़ा व्यक्ति आता है तो उसे मैं सीधा कर देता हूं। तो क्या इस कुबजा को मैं सीधा नहीं कर सकता हूं? तो भगवान ने कुबजा को अपने पास बुलाया और कुबजा के पैरों के ऊपर प्रभु ने अपना दाहिना चरण उठा करके रखा और बायां हाथ लेकर के कुब्जा की पीठ से लगाया और दो उंगलियां थोड़ी से लगाई और थोड़ी से लगा कर के कुब्जा को जोर से प्रभु ने झटका दिया कि झट कुब्जा को सीधा कर दिया। बोलो श्री वृंदावन
बिहारी लाल की जय।
ये कुब्जा कौन है? ये हमारी बुद्धि भी कुब्जा है। ये बुद्धि हमारी कुब्जा है, टेढ़ी है। परमात्मा से विमुख बुद्धि को कुब्जा कहते हैं। ईश्वर से दूर जो बुद्धि है, परमात्मा से जो विपरीत बुद्धि है, उसे कुब्जा कहते हैं। इस कुब्जा रूपी बुद्धि को जब हम परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं तो भगवान इस कुब्जा रूपी बुद्धि को सीधा कर देते हैं। तो आज कृष्ण ने उस कुब्जा को सीधा किया, रति सुख का वरदान देकर के भगवान कुब्जा को वहां से पधारे। जहां पर धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा था वहां कृष्ण गए और प्रभु ने सबके देखते देखते उस धनुष को उठा करके धनुष का भंजन कर कंस का मान भंग किया। अपने डेरे में कृष्ण आए, लेकिन कंस ने जब धनुष के टूटने की आवाज को सुना मथुरा में, तो कंस का दिल दहल गया और अंतिम समय के लक्षण कंस को अप्रगट होने लगे। ये भागवत में अंतिम जब व्यक्ति मृत्यु के सन्निकट होता है तो उसको कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भागवत में लक्षण का वर्णन किया है। यदि स्वप्न में व्यक्ति अपने आप को गर्दभ पर बैठे हुए देखे और अंग से कीचड़ पोती हुई हो, ये अंतिम माने 6 महीने में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा भागवत में लिखा है। ये लक्षण शुभ नहीं है। जब हम मिट्टी पर चलते हैं तो हमारे पैरों का मिट्टी में चिन्ह बन जाता है, छप जाता है। यदि ये छाप मिट्टी में न पड़े हमारे पैरों की, ये भी अंतिम समय का लक्षण है। दर्पण में अपने चेहरे को हम देखें, सारा चेहरा तो हमारा दिखाई दे, लेकिन उस पर छिद्र छिद्र यदि हमको लगे ऐसा दिखाई पड़े, या अस्पष्ट हमको अपना चेहरा दिखाई दे, स्पष्ट न दिखाई दे, ये भी अंतिम समय का लक्षण है। और सबसे नजदीक लक्षण कि कानों में जब हम उंगली डालते हैं तो गूंज होती है, जिसे कहते हैं प्राण संचार। ये प्राण संचार यदि बंद हो जाए, गूंज कानों की यदि बंद हो जाए, तो 8 दिन के अंदर में उस व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है। ये गूंज का बंद होना इस संकेत है। यहां भी कुछ भाई बहन अपने कानों में उंगली डाल करके देख रहे हैं। अरे श्याम प्यारे के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में बैठे हो, बाल बांका नहीं होगा, चिंता मत करना। हाँ, लेकिन जांच जरूर कर लेना, हाँ, या करा लेना। हाँ, भागवत में तो लिखा है कि प्राण संचार यदि बंद हो जाए तो 8 दिन में गोविंदाय नमो नमः। ये सब कंस को दिखाई दे रहा था। रात्रि में कंस ने जैसे तैसे बिना सोए निकाली रात और प्रातःकाल मथुरा में घोषणा करा दी कि आज धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। तो बड़े बड़े पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए और देखने के लिए मथुरापुरी में आए हैं। जब ब्रजवासियों ने सुना तो ब्रजवासी भी कुश्ती देखने के लिए उस अखाड़े की ओर गए जहां पर कंस ने दंगल का कार्यक्रम रखा है। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही दंगल के क्षेत्र की ओर बढ़े। दंगल के क्षेत्र के द्वार पर कुबलापीण हाथी खड़ा था। भगवान ने उस हाथी का संहार करके उसके दांत निकाल लिए और रंगशाला भूमि के अंदर प्रवेश किया। कंस अंदर बैठे थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रंगशाला भूमि के अंदर जब भगवान ने प्रवेश किया है तो मल्लानाम अशरणनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदतो रंगम गतः साग्रज। जब रंगशाला भूमि के अंदर जाकर के भगवान खड़े हुए तो उस समय के दृश्य का भागवत में सुखदेव जी ने वर्णन किया है। परीक्षित को बोले कि राजन, पहलवानों को भगवान पहलवान के रूप में दर्शन दे रहे थे, वहां पर स्त्रियों को कामदेव के रूप में कृष्ण का दर्शन हो रहा है, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जो सामने ही कमरे में जेल में बंद थे उनको भगवान एक बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, अपने ब्रजवासियों को स्वजन के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा था और मृत्युर भोज पते विराट विदुषाम, भोज पते माने कंस, कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है और वृष्णियों को परम देव के रूप में श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी अतिन तैसी। उस रंगशाला भूमि में जिसका जैसा भाव था उस भाव के तद अनुरूप भगवान उनको दर्शन दे रहे थे। चाणूर और मुष्टिक ये दोनों रंगशाला भूमि में खड़े हैं और ताल ठोक रहे थे, बार बार कृष्ण और बलराम को लड़ने के लिए ललकार रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण चाणूर से बोले कि भैया हम तो छोटे छोटे बालक हैं और कहां तुम कितने बड़े बड़े पहलवान हो, हम तुमसे कैसे कुश्ती लड़ सकते हैं। चाणूर ने भगवान को कहा कि न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह, कृष्ण आप बालक नहीं हो, अरे जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत, ऐसे कुबलापीड हाथी को तुमने खेली खेल में मार दिया, मेरे से तुम कुश्ती लड़ो। अब बार बार भगवान को लड़ने के लिए जब ललकारने लगे तो बलराम जी से श्री कृष्ण बोले कि दादा फिर दिखाओ ना दो दो हाथ। जब ये दुष्ट लड़ने ही आ गए हैं तो बलराम जी को इशारा करके श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही रंगशाला भूमि में कूद पड़े हैं। चाणूर के साथ भगवान कृष्ण की कुश्ती हो रही है और मुष्टिक के साथ श्री बलराम जी महाराज की कुश्ती हो रही है। भगवान ने चाणूर को दोनों हाथों के ऊपर उठा लिया और चक्कर फिरा करके भगवान ने भूमि में उस चाणूर को पटक दिया है। शरीर से आत्म ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में विलीन हो गई है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। भगवान चाणूर का संहार करके लघिम्नोत्पत्त तर्षा मंच मुंतंग मारोहत, जिस पर कंस बैठे थे नीचे से ही भगवान ने छलांग लगाई और उस मंच के ऊपर भगवान चढ़ गए। जब कंस ने देखा तो कंस ने तम खंग पाणि विचरंत माशु भगवान को मारने के लिए तलवार निकाल ली। भगवान बोले, अपने मामा कंस को कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, लेकिन एक बार भी आपने प्यार से मुझे कनुआ नहीं कहा और अंत समय आप मुझे तलवार दिखा रहे हो। मन में विचार करते हैं भगवान कि यह अधर्म का प्रतीक है कंस, इसने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, लेकिन पाप किसी का बाप नहीं है। बाप हो तो क्षमा कर दे, लेकिन पाप किसी का बाप नहीं है। पाप करते समय तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन जब व्यक्ति भोगने पर जाता है उस पाप को, तब ये कहता है कि मैंने तो ऐसा नहीं किया था, ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ। भैया, तीन प्रकार से प्राणी को कर्म फल भोगना पड़ता है, प्रारब्ध के रूप में, संचित के रूप में और क्रियमाण के रूप में। ये तीन प्रकार से व्यक्ति के जीवन में उसे कर्म फल प्राप्त होते हैं, इसलिए व्यक्ति को पाप से जहां तक हो बचो। पाप जैसे अग्नि को आप छुओगे तो अग्नि का काम क्या है? जलाना। अग्नि को कोई भी छुए, बालक छुए, जवान छुए, कोई बुढ़ा व्यक्ति छुए, अग्नि का काम जलाना है। ऐसे ही पाप किसी भी स्थिति में क्यों ना किया जाए, पाप पाप है। भगवान ने विचार किया कि इस कंस ने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, ये अधर्म का प्रतीक है और इसके पाप का घड़ा भर चुका है। ऐसा मन में विचार करके भगवान वहीं मंच पर श्री कृष्ण उछले और उछल करके भगवान ने कंस की चोटी पकड़ ली। क्यों? भगवान को याद आ गई कि इस दुष्ट ने मेरी मां के भी केश पकड़े थे, मेरी मां के भी केश खोले थे इसने। वो दिन भगवान को याद आ गया, तो कंस की भी भगवान ने चोटी पकड़ करके खोल दी और कहा कि अब आपके कोई कर्म बाकी नहीं बचे हैं, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। ऐसा कह करके विशाल मंच के ऊपर से कंस को प्रभु ने नीचे पटक दिया और ऊपर से त्रिलोकी का भार लेकर के श्री कृष्ण कंस के ऊपर कूद पड़े। जब भगवान कंस के ऊपर कूदे, जितने भी ब्रजवासी वहां पर बैठे थे सभी प्रसन्न हुए। मथुरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रसन्नता न हुई हो, क्योंकि उस कंस के पाप, कंस के अत्याचार से सब दुखी थे। सबको आनंद मिला, कंस की मृत्यु पर सबको प्रसन्नता हुई और सबने ताली बजा बजा करके भगवान का स्वागत किया। लेकिन एक व्यक्ति था वहां जिसको कंस की मृत्यु पर खुशी नहीं हुई, जिसने ताली भी नहीं बजाई, न भगवान का कीर्तन किया, न हिला, न डुला, न कुछ बोला। वो कौन था मालूम है? न तो उसने ताली बजाई, न झूमा। वो था कंस जो मर गया। तो दो मिनट के लिए कीर्तन करना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो झूम झूम करके श्याम प्यारे का कीर्तन करेगा भैया वो तो ठाकुर जी के श्रेणी में आएगा, और जो कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा नहीं झूमेगा वो समझ लेना किसकी श्रेणी में जाएगा।
जय गोविंदा गोपाला मुरली मनो
Oh,
पहले दोनों हाथ उठा करके दो मिनट के लिए ताली सेवा करते हो। ताली क्या है मालूम है? ये ताली आपके पास चाबी है।